अध्याय मुकम्मल झूठ, जब उम्मीद एक अधूरी बात बन जाए। शाम 4:10 बजे, अखिल का ऑफिस। कॉफी खत्म हो चुकी थी, मग मेज पर थे, हवा अब कुछ ठंडी लगने लगी थी, मगर कमरे में पसरा सन्नाटा अब भी वैसा ही था, गाढ़ा और अपरिभाषित। रैना उठी धीरे धीरे। उसके कंधों पर अब भी वही ठंडा आत्मविश्वास था, मगर आंखों में कोई हल्की सी परछाई फिसल गई थी जिसे वो जानबूझकर पलकों के पीछे छिपा रही थी। अखिल ने उसकी हरकतों को देखा मगर कुछ नहीं कहा। रैना ने अपनी हील्स को संभालते हुए क्लच उठाया और चलते चलते दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब मुझे जाना होगा। अखिल कुछ पलों तक उसे देखता रहा, फिर पूछा, रात को आओगी? उसका स्वर बहुत धीमा था, जैसे पूछते हुए भी उसे जवाब की दरकार नहीं थी। रैना दरवाजे तक पहुंची फिर रुक गई। उसने पलट कर देखा और बहुत ही साधारण लहजे में कहा, कुछ वक्त के लिए अब यही मेरा ठिकाना है। फिर एक हल्की मुस्कुराहट, जो मुस्कान कम और विदाई ज्यादा थी, और उसने दरवाज़ा खोल दिया। अखिल वहीं खड़ा रहा, उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ। कोई आवाज़ नहीं हुई, कोई अलविदा नहीं, कोई यकीन नहीं कि वो फिर लौटेगी, बस उसकी मौजूदगी जो अभी थी और अब जा चुकी थी। शाम 5 बजे, मुंबई हॉस्पिटल मालाड ईस्ट। हॉस्पिटल के कॉरिडोर अब शांत थे, इमरजेंसी का वक्त खत्म हो चुका था और विजिटिंग आवर का आखिरी हिस्सा चल रहा था। रैना की चाल अब थोड़ी तेज थी, मगर उसकी आंखों में अलग सी स्थिरता थी। कमरा नंबर 219 के बाहर वो कुछ पल रुकी, फिर उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। भीतर उसके पापा बिस्तर पर लेटे थे, एक पतली चादर ओढ़े, आंखें बंद लेकिन होश में। उनके चेहरे की झुर्रियाँ गहरी लग रही थी, जैसे थकान अब सिर्फ बदन की नहीं आत्मा की हो। रैना ने धीमे से पास आकर कुर्सी खींची। पापा, उसने हल्की आवाज़ में कहा। उनकी आंखें खुली, धीमी मगर जिंदगी से भरी हुई। जब उन्होंने रैना को देखा, एक हल्की सी मुस्कान उनके होंठों पर आई। तू आ गई? उनकी आवाज़ फुसफुसाहट सी थी, मगर इसमें स्नेह था। रैना ने सिर हिलाया और उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। आपको एक खुशखबरी देनी है, उसने कहा, अपनी मुस्कान को जरा सा और चौड़ा करते हुए। क्या? उनकी आवाज़ धीमी पर उत्सुक थी। पैसों का इंतज़ाम हो गया है। उनके चेहरे पर जैसे अचानक रोशनी सी फैल गई। सच? रैना ने सिर हिलाया। कैसे? उन्होंने पूछा। रैना ने जरा सा ठहर कर कहा, बस एक जगह से लोन मिल गया, जमानत की ज़रूरत नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, फिर एक हफ्ते में सारा क्लियर हो जाएगा। उनकी आँखें भर आईं, उन्होंने अपनी उंगलियाँ उसकी हथेलियों पर कस लीं। तेरे पास क्या है बेटा, तो खुद क्या करेगी? उनके शब्दों में चिंता थी, एक पिता की जो अपनी बेटी के कंधों पर बोझ महसूस कर रहा था। आप ठीक हो जाइए पापा, बाकी सब देखा जाएगा। वो अब पूरी तरह संयम में थी, जैसे उसने खुद से एक तय दूरी बना ली हो। उसने उनकी ओर पानी का ग्लास बढ़ाया, धीरे से उन्हें सहारा देकर उठाया। वो पीते रहे और बीच बीच में रैना को देखते, उसकी आंखों में कुछ पढ़ना चाहते थे। तू रोई थी? उन्होंने धीरे से पूछा। रैना ने हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। नहीं, बस थोड़ी थक गई हूं, उसने कहा। मुझे माफ कर बेटा, अगर मैं ठीक होता। पापा, रैना ने उनकी बात काटी, उसकी आवाज अब कड़ी थी लेकिन टूटने के डर से भरी हुई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपने हमेशा सब कुछ दिया, अब मेरी बारी है। वो चुप हो गए। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। सिर्फ हार्ट मॉनिटर की बीप थी और दीवार घड़ी की टिक टिक। रैना ने उनकी ओर देखा। ऑपरेशन की तारीख तय करनी है, डॉक्टर से बात की थी मैंने, उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी पेमेंट हो जाएगा उतना बेहतर। उन्होंने सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। रैना ने उनका हाथ चूमा धीरे से। बस ठीक हो जाइए और एक दिन फिर अपने हाथों से मेरी शादी की मिठाई खिलाइए। उनकी आंखों में चमक आ गई। तू कब से इतनी फिल्मी बातें करने लगी? जब से असली जिंदगी ड्रामा बन गई, उसने हल्के से कहा और दोनों हंस पड़े, थकी हुई लेकिन जिंदा हंसी। शाम 6:20 बजे, हॉस्पिटल कॉरिडोर, बाहर की बेंच। रैना अकेली बैठी थी, हाथ में उसका फोन था, स्क्रीन ऑफ। पास ही एक नर्स कागज लेकर गुजरी और रैना को देखा। मैम, कोई जरूरत हो तो बताइएगा, वो बोली। रैना ने सिर हिलाया। हाँ, शुक्रिया। उसने फिर फोन उठाया, कुछ देर तक देखा, फिर बिना कुछ लिखे स्क्रीन बंद कर दिया। उसकी उंगलियां उस चुप स्क्रीन पर फिसलती रहीं, जैसे कोई शब्द भीतर ही भीतर लिखे जा रहे हों पर बाहर नहीं आने चाहिए। उसने अपनी सांस रोकी, फिर गहरी सांस ली।
और फिर बुदबुदाई, मुझे कोई सवाल नहीं पूछने, मुझे सिर्फ चलना है। रात की आहट धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी, लेकिन रहना अब दिन और रात के फर्क से परे जा चुकी थी। उसने खुद से किया एक वादा निभा दिया था, बिना पूछे बिना बताए, एक झूठ बोला जो किसी सच्चाई से बड़ा था। अब आगे क्या होगा ये सोचने का वक्त अभी नहीं था, क्योंकि अब एक ऑपरेशन बाकी था और एक लड़की जो हर दिन थोड़ा और मजबूत बन रही थी।